सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के तीसरे एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज हम सुनेंगे कणिक की कूटनीति की कथा और जानेंगे कि कणिक कौन थे और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें राजमहल में क्यों बुलाया था। आपके इन सभी सवालों का उत्तर देने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने अर्जुन और पांचाल नरेश द्रुपद के बीच हुए युद्ध की कथा सुनी थी। युद्ध में पराजय का सामना करने के बाद राजा द्रुपद अब एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे थे जो द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। दरअसल युद्ध में परास्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने द्रुपद को दोबारा मित्रता का अवसर देते हुए आधा राज्य देने का निश्चय किया, और द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य की बात को मान लिया। लेकिन द्रुपद अभी भी अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाए थे, और इसी कारण वह एक शूरवीर पुत्र की कामना कर रहे थे। अब युधिष्ठिर का युवराज अभिषेक हो गया है। सभी पांडवों की वीरता की कथा पूरी पृथ्वी पर गूंज रही है। इसी कारण राजा धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए हैं। अपनी इसी चिंता का निवारण करने के लिए उन्होंने कणिक को हस्तिनापुर बुलाया है। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। कणिक को अपने समक्ष बैठाकर धृतराष्ट्र ने कहा, पांडवों की हर दिन बढ़ रही उन्नति और यश देखकर मैं ईर्ष्या रखने लगा हूँ। तुम तो अर्थशास्त्र के पंडित हो और उत्तम मंत्र के ज्ञानी हो, तुम ही मुझे बताओ कि मुझे अपने भाई के पुत्रों के साथ संधि करनी चाहिए या उनसे युद्ध करना चाहिए। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर कणिक को मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई, और इसी के साथ कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को कूटनीति का ज्ञान देना आरंभ किया। कणिक ने कहा, राजन, मेरी यह बातें सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि मत रखिएगा। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु को कभी उसकी कमजोरी का पता ना चले। लेकिन जैसे ही राजा को उसकी कमजोरी का पता चले, राजा उस कमजोरी पर वार कर दे। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपने सभी अंगों की, अर्थात स्वयं की, राष्ट्र की, दुर्ग की, राजकोष की और अपनों की रक्षा करनी चाहिए है। साथ ही साथ अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखना चाहिए है। राजा को अपने हर कार्य को पूरा करना चाहिए है। जो भी शत्रु राजा का बुरा चाहते हैं, उनका अंत करना चाहिए है। केवल बलवान ही नहीं बल्कि कम बलवान शत्रु को भी समय से समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब वह शत्रु बलवान होकर आप पर आक्रमण कर दे। शरण में आए शत्रु पर दया न करके उसका वध कर दीजिए। अपने शत्रुओं का विनाश करके ही राजा निर्भीक होकर रह सकता है। पहले अपने शत्रु का विश्वास जीतिए और समय आने पर उसका वध कर दीजिए। सहज यानी के जन्मजात शत्रु को भी मुंह मांगी कीमत देकर विश्वास में लेकर उसका भी वध कर दो। इन सभी कूटनीतियों का ज्ञान देते हुए कणिक ने धृतराष्ट्र को तीन प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया, जिन्हें त्रिवर्ग भी कहा जाता है। उन तीन शक्तियों का नाम इस प्रकार है, प्रभु शक्ति, जिसे हम ऐश्वर्य शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति के नाम से भी जानते हैं। शत्रुओं के राज्य पर आक्रमण करके उनके ऐश्वर्य को नष्ट करना, उनके उत्साह और साहस को घटाकर उनकी उत्साह शक्ति को नष्ट करना, गुप्तचरों के द्वारा उनके रहस्य अर्थात मंत्रों के विषय में जानकर उनका नाश करना, ये सभी एक उत्तम राजा के कर्तव्य हैं। कणिक ने राजा को पंचवर्ग के बारे में बताते हुए कहा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेना शत्रु। राजा को इन पांचों पंचवर्गों का नाश कर देना चाहिए है। इसके अतिरिक्त साम, दान, दंड, भेद, बंधन, विष प्रयोग और आग लगाना, शत्रु को वश में करने के या दबाने के यही सप्त वर्ग हैं, अर्थात यही सात तरीके हैं। राजा को हमेशा अपने शत्रुओं पर नजर रखनी चाहिए, उनकी कमजोरियों पर नजर रखते हुए अपनी सभी कमजोरियों को छुपा कर रखना चाहिए। हमेशा साधु बनकर उनका विश्वास हासिल करें और सही वक्त आने पर अपने शत्रु का नाश कर दें। याद रखिए, हर कार्य उस महान फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है जब तक समय आपके अनुकूल ना हो जाए। तब तक शत्रु को अपने कंधे पर ढोते रहिए और सही समय आते ही उसका अंत कर दीजिए। धृतराष्ट्र कर्णिक की सभी बातों को बहुत ध्यान और धैर्य से सुन रहे थे। उन्होंने कणिक से पूछा, कणिक, साम दान दंड भेद इन सभी के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जाता है, मुझे विस्तार से बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक गीदड़ की कथा सुनाता हूँ। एक बड़े घने जंगल में एक बहुत शातिर, स्वार्थी और बुद्धिमान गीदड़ रहता था। उस गीदड़ के चार मित्र थे, चूहा, बाघ, भेड़िया और नेवला। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन सभी ने हिरणों के सरदार को देखा। हिरणों का सरदार बहुत ही बलवान और फुर्तीला था और इसी कारण वे सभी उसे पकड़ भी नहीं पाते थे। एक दिन चालाक गीदड़ ने सलाह करके कुछ विचार करते हुए अपने मित्रों से कहा, भाई बाघ, तुमने इस हिरण को मारने के, पकड़ने के न जाने कितने ही असफल प्रयास किए हैं, लेकिन हमेशा असफल ही रहे हो, क्योंकि हिरण दौड़ने में तुमसे ज्यादा फुर्तीला और बुद्धिमान है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हम उस हिरण को आसानी से पकड़ सकते हैं। गीदड़ ने कहा, जब यह हिरण सो रहा होगा तब चूहा जाकर उसके पैर कुतर देगा। कुतरे हुए पैरों से हिरण भाग नहीं पाएगा और तुम आसानी से उसे पकड़ लोगे।
सभी को गीदड़ का सुझाव बहुत अच्छा लगा और सबने उसके कहे अनुसार ही कार्य करना भी शुरू कर दिया। चूहे ने सोते हुए हिरण के पैर कुतर दिए और बाघ ने मौके का लाभ उठाकर हिरण को मार दिया। मृत हिरण को देखकर गीदड़ ने कहा,
आप सभी स्नान करके आइए, इतने तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ।
गीदड़ की बात मानकर सभी स्नान करने चले गए। दूसरी ओर गीदड़ चिंता में डूबा हुआ कुछ विचार करने लगा। इतने में ही बाघ स्नान करके अपने शिकार को खाने के लिए वापस लौट आया। बाघ ने गीदड़ को चिंतित देखकर उसकी चिंता का कारण पूछा।
गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, चूहे ने जो मुझसे कहा वह तुम ध्यान से सुनो। चूहे ने मुझसे कहा कि इस हिरण को तुम केवल उसके कारण मार पाए हो। साथ ही साथ उसने कहा, तुम्हारे बल पर धिक्कार है, असल में तो मृग को मैंने मारा है। उसकी बातें सुनकर मुझे इस हिरण को खाने में अच्छा नहीं लग रहा है।
गीदड़ की बातें सुनकर बाघ ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो उसने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं केवल अपने बल से मारे हुए जीव जंतुओं को ही खाया करूंगा। ऐसा कहकर बाघ वहां से चला गया। बाघ के जाते ही चूहा भी वहां आ पहुंचा। चूहे को आता देखकर गीदड़ ने कहा,
भाई चूहे, नेवले ने मुझसे कुछ कहा है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। नेवले ने कहा कि बाघ के काटने से यह हिरण जहरीला हो गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ आज मैं चूहे को खाकर अपना पेट भर लूं।
यह बात सुनते ही चूहा दुम दबाकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िया भी स्नान करके भोजन करने आ पहुंचा। गीदड़ ने भेड़िये से कहा,
भाई, आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। बाघ बागिन को लेकर तुम्हारा ही शिकार करने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें जो उचित लगे वही करो।
गीदड़ की बातें सुनते ही भेड़िया दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बारी थी नेवले की। नेवले को आता देखकर गीदड़ ने कहा,
ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल से बाघ, भेड़िये, चूहे सभी को हरा दिया है। तुझ में हिम्मत है तो मुझे हरा और उसके बाद ही अपनी इच्छा अनुसार मांस खा।
नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा कोई भी तुम्हारे आगे नहीं टिका तो भला मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूँ। ऐसा कहकर नेवला भी वहां से चला गया। इस तरह गीदड़ की युक्ति सफल हुई और उसने अकेले ही उस शिकार को खाया। राजन, ऐसे ही आचरण रखने वाले राजा सदा सुखी रहते हैं और उन्नति को प्राप्त होते हैं। अपने से कमजोर को समाप्त कर दें और बलशाली को हाथ जोड़कर वश में कर लें। अब मेरी दूसरी बात सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पति और गुरु, कोई भी आपके सामने क्यों ना हो, यदि वह शत्रु पक्ष में है तो वैभव चाहने वाले राजा को उन्हें अवश्य मार देना चाहिए है। सौगंध खाकर, धन देकर या जहर देकर या धोखा देकर किसी भी कूटनीति से अपने शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए है। यदि कभी गुरु भी घमंड से भरकर अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो वह भी दंड का भागी होता है। अगर राजा के मन में किसी के लिए क्रोध भी है तो उस क्रोध को छुपाकर मुस्कुराएं। कभी भी क्रोध में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए है। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और करते समय उससे मीठे वचन बोलने चाहिए हैं। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया भाव दिखाते हुए आंसू बहाएं। शत्रु के मन में भी अपने लिए विश्वास उत्पन्न करें और सही समय आते ही उस पर प्रहार करें और उसका वध कर दें। धर्म का ढोंग करने से आपके सभी पाप ऐसे ढक जाते हैं जैसे पर्वत काले बादलों की घटा से ढक जाते हैं। जिसे शीघ्र ही मारने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दें। गरीब, धनहीन और चोरों को भी अपने राज्य में न रहने दें। अपने शत्रु को पता न चलने दें कि वह आपका शत्रु है और वक्त आने पर सर्प की भांति अपने शत्रु पर प्रहार करें और उसे समाप्त कर दें। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करें और विश्वास पात्र पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। अपने गुप्तचर भी बहुत देखभाल कर रखें। राजा को बातचीत में अत्यंत विनयशील होना चाहिए है, क्योंकि राजा को अपने हृदय को छुरे की तरह तीखा और तेज रखना चाहिए है। अपनी मनोदशा कभी भी किसी को पता ना चलने दें। अर्थ, धर्म और काम, इन तीन प्रकार के पुरुषार्थ वाले व्यक्ति को तीन बाधाओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही उन्हें तीन प्रकार के फल भी मिलते हैं। इनके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। धर्म का फल है अर्थ, काम का फल है भोग, अर्थ का फल है धर्म का सेवन और भोग की प्राप्ति, और काम का फल है इंद्रिय तृप्ति अर्थात इंद्रियों की तृप्ति। इन तीनों से उत्पन्न हुई बाधाओं से बचकर इन सभी का सामंजस्य जीवन में बनाए रखना चाहिए है। इसी प्रकार कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को कूटनीति पर और उपदेश दिया और अंत में कहा, राजन, आप भी इसी नीति का पालन करके पांडवों और अपने शत्रुओं के साथ बताए गए बर्ताव को अपनाएं। आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा करें। आपके भतीजे बहुत बलवान हैं, इसीलिए आप ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपका भला हो और आपके शत्रुओं का नाश हो। ऐसा कहकर कणिक अपने घर चले गए और राजा धृतराष्ट्र शोक में डूबे हुए व्याकुल हो गए। आखिर अब राजा धृतराष्ट्र क्या करेंगे? क्या पांडवों की बढ़ती कीर्ति को देखकर धृतराष्ट्र पांडवों को भी अपना शत्रु मान लेंगे? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।